and Srila Prabhupada is in his last days. Srila Prabhupada had heard of the program of his disciple Lokanath Swami, who was taking a small group of men on a bullock cart and preaching in villages throughout India. Lokanath had told Prabhupada how in the course of their travels they had recently visited Tirthas such as Bhadrik Ashram and Bhim Kapoor. Srila Prabhupada was enlivened to hear this, and he then evolved a transcendental desire to go himself on a cart pulled by bullocks to circumambulate the area of Vrindavan. Tamal Krishna and Bhavananda, who were serving Prabhupada with increased intimacy, felt themselves unable to support Srila Prabhupada in his desire, since they thought his fragile body could not survive such rough treatment on the roads. Actually, at the time, Srila Prabhupada was hardly taking anything, and he was very lean and thin. Sometimes he himself described himself as just skin and bones. So some of the senior devotees who were serving Srila Prabhupada thought that how can Srila Prabhupada go on such rough roads on a bullock cart? He will not survive. Srila Prabhupada reasoned that dying on parikrama is glorious, and he asked them to take him. A controversy developed among the devotees, as some said Prabhupada's will to go on parikrama should be immediately honored as an order from the spiritual master. He wanted it, and he should not be denied. So one group thought that we must obey the order of the spiritual master. No one can know the mind of the spiritual master, so without any consideration, we should simply execute the order of the spiritual master. The doctor, however, assured them that Srila Prabhupada's body would not survive the jostling of the cart. The many devotees who crowded around Srila Prabhupada's bed held different opinions, and Prabhupada could see this. Following his request, however, Lokanath went out and hired a cart with bullocks and prepared it for the ride. Lokanath and Hansaduta suggested that the parikrama could go to the city of Vrindavan or visit the seven main temples of the Goswamis. But then they said that since the next day was Govardhan Puja, Prabhupada could go to Govardhan Hill. Here I'll ask the first question, that some devotees have commented that many acharyas in their last days or at other times want to take shelter of Govardhan Hill. We have heard that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada also used to recite one prayer for residents at Govardhan Hill. Nijanikatani Vasadehi Govardhan Twam. So could you tell us why the acharyas have the desire to take shelter of Govardhan Hill? Bhavananda and Bhakti Charu, however, protested adamantly against the parikrama. One day experiment, Prabhupada said. It is for one day. Rest assured, I will not die in one day. He liked the idea of going to Govardhan. and we shall make our cooking there, he said. Lokanath Swami, he assured them, was experienced. Make very good picnic, he said. After discussing back and forth, the devotees finally decided that early the next morning they would take Srila Prabhupada in a bullock cart to Govardhan. The majority of the devotees then left Srila Prabhupada alone for the night. Later that night, Srila Prabhupada received a visit from Ms. Kinchana Krishnadas Babaji, who sat with Prabhupada, chanting and sometimes speaking in Bengali. Suddenly, Kamal Krishna and Bhavananda came to Prabhupada's bedside. They were in tears and beside themselves with anxiety. Prabhupada understood. You request me not to go? He asked. Well, Srila Prabhupada, said Kamal Krishna, I'll tell you. I'm getting so upset sitting in the room upstairs. I was walking around. Two of the devotees told me that this road is so bad that if you go on this road, you're going to be jolted back and forth. The road is terrible. I just can't understand, Srila Prabhupada, why it has to be tomorrow that we have to go. If of anybody that wants you to travel, I do. But why do we have to go when you're in this condition? I can't understand it. Why are we throwing everything out the window that we must go tomorrow? I can't understand. All right, said Srila Prabhupada softly, immediately agreeing to their proposal that he not go. Jai Srila Prabhupada, said Bhakti Charu, who was also present. Thank you, Srila Prabhupada, said Bhavananda with great relief. All right, you're satisfied? Now I am, Srila Prabhupada, said Bhavananda. Yes, I was in too much anxiety. Never mind, I shall not put you in anxiety. Actually, Srila Prabhupada, said Kamal Krishna, we're so much attached to you that you practically drive us to madness sometimes. Tonight we were becoming mad. No, no, I shall not do that, said Prabhupada. Babaji Maharaj, Prabhupada turned to Ms. Kinchana Krishnadas Babaji and said, just see how much affection they have for me. Srila Prabhupada, said Kamal Krishna, the way you deal with us simply deepens our attachment every moment. It is my duty, said Prabhupada. And the devotees laughed warmly, understanding. Yes, they could understand. That was his duty. By all his actions and dealings, Prabhupada's intention was to capture spirit souls and deliver them to Krishna. His method was loving service, but he did not do it for himself. He was delivering them to Krishna. That was his duty. So, here the controversy amongst the disciples was, some disciples felt that Srila Prabhupada is the spiritual master, and we must obey the order of the spiritual master without any consideration. And the other group thought that Srila Prabhupada is so weak and frail, if he goes on the bullock cart on the rough road to Govardhan, he will certainly be jostled from side to side and suffer so much pain, and according to the doctor, he would not be able to survive the journey. So they didn't accept Prabhupada's wish to go by bullock cart to go over downtown. They wanted Srila Prabhupada to stay and recover his health and then think of traveling. So many of the devotees at the time felt that Srila Prabhupada was dealing with the devotees in such a way as to increase the devotees' attachment and love, that he was trying to bring them from the level of just obeying orders and following rules and regulations to a higher platform of affection and spontaneous desire in devotional service. And in one sense, the final lesson that Srila Prabhupada gave was that the devotees should not just stay on the platform of following orders and rules, but they should actually develop love and affection. The question would be, what about the different ideas of the devotees? Why should Srila Prabhupada give an instruction that would make the devotees think that he was going to leave them if they followed the instruction to take him on the bullock cart? And you can explain something about the duty of the spiritual master to make the devotees or inspire the devotees to develop attachment and love. That some devotees felt there was some deep significance in Srila Prabhupada's desire to go Vrindavan. That many acharyas in the past also had the desire to take shelter at Govardhan, and that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also used to pray for residence at Govardhan.
राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिका माधुरासं प्राप्तो दश कृपयाशीगुरुं तं कल्पगुरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णपरिमत्पदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यमन्ये गौरक्षिशे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय भक्त्या विघ्ना पराभवच्चैश्चित्ताश्चकामादिकर्मणमध्ये मयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते प्रमदमदीलाकन्दरे कन्दरे व्रजयतुमस्मिन्नमस्तपटुराशन्दे वरदन् मैं समझता हूँ कि अधिकांश श्रोता लोग हिंदी जानने वाले हिंदी में ही बोलना चाहते
हैं। दिस इज इंग्लिश क्लास, हिंदी इज इन द
मंडे। इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक।
नो,
बट आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ टाइम
they all know
only two are, only one or two
No, no, all know English. And your English is very sweet. Everybody appreciates your
English. My English is sweeter than you.
Next month, I will say that I should speak English. You think I can speak English? Then I feel it and express my idea. That in English I speak. Thank you.
Well, then.
So, you can explain something, but I will tell you. You can.
I don't understand.
Does that people know Hindi and English or anyone?
Last time you spoke in Hindi, I think this time.
Even if you have a question, you can understand the language and even a good question. No. No. No, Hindi.
ट्रांसलेशन चाहिए
मैं जब थोड़ा सा बोल लूंगा तब आप लोग बोल दो नहीं तो यदि सब समझते हैं सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट हूं विष्णु का शिक्षण भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज के चरणों का मिल अपनी आंतरिक श्रद्धा निवेदन करता तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी को मैं उनके चरणों में श्रद्धारूपी पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। गिरिराज स्वामी जी ने गोवर्धन जी की महिमा के संबंध में ये पूछा कि गोवर्धन की क्यों इतनी महिमा है कि हमारे पूर्व आचार्य सभी लोग गिरिराज की तलाटी में उनकी गोदी में बैठकर भजन करना चाहते हैं और गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमें स्थान दीजिए आपके चरणों में हम बैठ करके राधा कृष्ण जुगल की मैं सेवा कर सकूं। इस प्रश्न के उत्तर देने के पहले मैं कुछ भूमिका के रूप में कुछ बोलना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि चैतन्य महाप्रभु के पहले से भगवान के अवतार हो चुके हैं। बिफोर चैतन्य महाप्रभु देयर आर सो मेनी मैनिफेस्टेंस अवतार ऑफ कृष्ण इन दिस वर्ल्ड। बहुत से अवतार हो गए मत्स्य अवतार से लेकर राम अवतार कृष्ण अवतार इत्यादि हो गए हैं। लोगों ने लोगों के अधिकार के अनुसार कुछ वो देने के लिए आए थे उपहार देने के लिए इनका कल्याण कैसे के उपहारों का अपना अपना एक एक वैशिष्ट्य था। मत्स्य जल जो देने के लिए आए नृसिंह जी उसे कुछ अधिक देने के लिए आए नृसिंह जी से परशुराम जी कुछ अधिक देने के लिए आए उनसे रामचंद्र जी का जो जीवों के लिए कल्याण के लिए जो दिया और भी उन्नत था और उन लोगों ने सबने मिलकर के जो कुछ दिया और नहीं भी दिया उन सबको कृष्णचंद्र जी ने उनके समस्त उपहारों को अपने अंदर में क्रोड़ीभूत कर सब चीजों को दिया जो कि और किसी भी अवतार में नहीं दिया गया था और जिन्होंने जिन्होंने दिया था वो सबको भी दिया और एक विशेष चीज दिया वो दिया प्रेम। रामचंद्र जी दास भावत्व को दिया, किंतु प्रेम को अच्छी तरह से नहीं दिया, क्योंकि वो लोग लेने के लिए उपयुक्त नहीं थे, वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे। इसलिए रामचंद्र जी ने उस युग के अनुरूप उन लोगों के लिए उपयोगी मर्यादायुक्त कुछ प्रेम दिया। प्रेम दिया किंतु मर्यादा में बधा हुआ प्रेम दिया। किंतु कृष्णचंद्र जी ने उस मर्यादा के बंधन को हटाकर विषम्भ भाव, बहुत ही सुंदर प्रेम लोगों को दिया। यहां तक कि पशु पक्षी कीट पतंग और लताओं को भी प्रेम दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। यही प्रेम का अपना स्वरूप है, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जितने भी लिविंग आइडेंटिटी हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे जीव योनि में हों, सबका नित्य स्वरूप है कृष्ण के प्रति प्रेम। और वो जीवों के स्वरूप को नहीं दे सके, किंतु कृष्णचंद्र जी उन लताओं को जिनको स्पर्श किया, उन मयूरों को, उन कोकिलों को, उन सुख और साड़ियों को, सबको कृष्ण प्रेम दिया और उसमें प्रमत्त कर दिया। ऐसा किसी ने ये स्वरूप की चीज और लोगों ने, किसी ने वेद को दिया, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो और सब चीजें अपनी स्त्री के प्रति हो, अच्छी तरह से हो, स्त्रियों को पति के प्रति रहना चाहिए ऐसा, ये सब मर्यादा संपन्न उपदेश लोगों ने दिए। उसमें किसी ने भी मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं इतना अच्छी तरह से नहीं कहा, किंतु कृष्ण ने सबको बतला करके बतलाया कि जीव का स्वरूप है भगवान को प्रेम करना, इसलिए उन्होंने दिया। इसलिए कृष्ण के प्रेम का वैशिष्ट है। किंतु कृष्ण के प्रेम का एक देने का एक तरीका था, वो तरीका था उनके पास में वजन करने का सुंदर कांटा था। कांटा आप लोग जानते हैं वजन करने का,
तराजू।
वो तौल करके प्रेम देते थे, जिसको एक पैसे का प्रेम है अधिकार है तो उनको एक पैसे का प्रेम दिया, जिसको दो पैसे का भाव है उनको दो पैसे का प्रेम दिया, अधिक नहीं दिया न कम दिया, वजन करके दिया। ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजन्ते, जो जैसा हमको चाहता है उसी रूप में उसको मैं देता हूं, जो जैसा हमारा भजन करता है उसको वैसा देता हूं, अधिक नहीं देंगे कम नहीं देंगे। और एक बात और है, जैसा पात्र ले जाएंगे आप वैसा ही प्रेम देंगे, पात्र के अनुरूप शांत भाव से जाएंगे तो ब्रह्म के रूप में दिखेंगे, यदि आप दस भाव को लो करके जाएं तो वो उसी रूप में दिखेंगे प्रभु के रूप में। कोई मित्र के रूप में जाएगा पात्र लेकर के तो उसको मैत्री का भाव दे दे, और जो वात्सल्य का पात्र लेकर के जाएगा उसको वात्सल्य रस उसमें दे देंगे, जो गोपियों का भाव लेकर के जाएगा उसको वो दे। पात्र लेना जरूरी है, किंतु चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण परम दयालु होकर के जब आए कलयुग में, अभी 500 वर्ष पहले उन्होंने उस बंधन को भी तोड़ दिया। तो ये बच्चे ये सब बर्तन कहां से लाएंगे, पात्र कहां से लाएंगे, पात्र लाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही चले आओ हमारे पास, पात्र भी दूंगा और रस भी दूंगा, प्रेम भी दूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। और एक चीज दिया, ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, इस भाव को भी नियम श्रृंखला को भी तोड़ दिया। जो कोई आए हमारे पास में वो संसारिक भी कुछ चाहेगा तो नहीं दूंगा, उसको प्रेम ही दूंगा। यदि कोई एक पैसा का भी भाव लेकर के आया उसको मैं वही चीज दूंगा, प्रेम दूंगा। ये जथा माम प्रपद्यन्ते, इस नियम को भी तोड़ दिया। ये चेतन महापुरुष की बड़ी कृपा है। पात्र भी दिया और वो प्रेम भी उच्च कोटि क्या दिया, और ऐसा प्रेम दिया जिसको कृष्ण भी नहीं दे सके अपने उस स्वरूप में। क्यों नहीं दे सके? उसने कृष्ण भोक्ता थे, पुरुष थे, परम पुरुष थे, इसलिए वो अपने प्रति सेवा उन्होंने दिया। किंतु ये चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वो कृष्ण की श्याम मूर्ति राधा जी के गौर अंग के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए कर्तृत्व है राधा जी का। शरीर तो कृष्ण का भीतर में है किंतु अपने उनका कुछ स्वतंत्रता यहां नहीं है। यहां स्वतंत्रता किसकी है? राधा जी की स्वतंत्रता है। राधा जी के भाव से ओतप्रोत हैं, उनका अपना मन, उनका अपना भाव राधा जी के भावों से और उनका अंग उनके अंगों से ढक गया है। इसलिए यहां जो कुछ प्रकाशित हो रहा है वो कृष्ण कृष्ण जो कर रहे हैं ये राधा जी कर रही है। कृष्ण उस समय राधा जी के भावों से विभावित हैं, किंतु कृष्ण लीला में कृष्ण राधा जी के भावों से विभावित नहीं थे। राधा जी का भाव है महाभाव, कृष्ण रसराज हैं, रसों का आस्वादन कर सकते हैं, किंतु राधा जी का जो भाव है उसको वो आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए राधा जी से भीख मांगकर उनके भावों को लिया है। इसलिए यहां पर राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के महाप्रभु जी के रूप में है, इसलिए यहां पर जो चीज देंगे एक ऐसी चीज देंगे जो कृष्ण भी नहीं दे सकते। वह चीज क्या है जो आज तक नहीं दिया गया? अनर्पित चरिंग चिराग करुणया होते करुण। कृष्ण ही परम करुण होकर के इस जगत में आए हैं, राधा जी का भाव लेकर के, उनकी अंग कांति को लेकर के, करुणापूर्वक एक चीज देने के लिए जो आज तक भाव नहीं दिया गया। और वो भाव क्या था? वो भाव क्या था? उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल भाव, उन्नत उज्ज्वल भाव कहते हैं राधा जी के पर्वतीय भाव को, उन्नत उज्ज्वल कहते हैं। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में इसी की केवल व्याख्या है, विशद व्याख्या है। क्यों कहा गया? तो गोपियों के भाव को उन्नत उज्ज्वल भाव कहते हैं, और उनमें सबसे श्रेष्ठ राधा जी हैं, जिनके भाव से उन्मत्त होकर के यहां पर आए हैं। उनके भावों का श्री माने शोभा, भाव का श्री किसको कहते हैं? जैसे कोई लता है, लता में पताएं होती हैं, पत्ते होते हैं, यदि उसमें पत्ते और मंजरी न हो तो वो ठूठी लता है, उसका कोई भी सौंदर्य नहीं है। जिसमें लताओं में, जिन लताओं में अधिक से अधिक हरे पत्ते हों और जिसमें मंजरी हो, थोड़ी सी हवा में ऐसे ऐसे खेलने लगती है, हवा में लहराने लगती है, उस लता का सौंदर्य अधिक होता है। तो गोपियों की जो भाव की जो शोभा है, अर्थात गोपियों का दासी भाव जो है, इसको चैतन्य महाप्रभु देने की, यही गोपियों की उन्नत उज्ज्वल रस का भाव है, ये शोभा है, इसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। इसलिए इनको अनर्पित चरिंग चिराग कहा गया, जो आज तक नहीं दिया गया। अब इसके पहले बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं महाप्रभु जी के पहले, प्रभुपाद हो गए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हो गए, हम लोगों के गुरु हो गए, रूप गोस्वामी इत्यादि हैं। इसके पहले मध्वाचार्य हुए, रामानुज हुए, विष्णु स्वामी निम्बार्क इत्यादि हो गए हैं, नारद हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी हुए हैं, बड़े बड़े पराशर इत्यादि ऋषि हो गए हैं, ऋषभ देव का नाम सुना है वो भी हो गए हैं, कपिल देव भी हो गए हैं। इन लोगों ने क्या दिया?
महाप्रभु के इस भाव को दिया क्या? कोई नहीं दे सके, कृष्ण भी नहीं दे सके, तो और लोगों की तो बात क्या। किंतु हम लोगों के जो रूप गोस्वामी हैं उन्होंने क्या दिया? वही ठीक भाव, महाप्रभु का जो भाव था उसी को दे दिया। ये जो हम लोगों के अभी जिनका पाठ आप लोगों ने सुना, प्रभुपाद जी हैं, जो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, ये क्या देने के लिए इस जगत में आए? क्या चीज का रस साधन करने के लिए? उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इस पर हम लोगों को विचार करना है। और यदि इस पर विचार करेंगे तो प्रश्न का मीमांसा अपने आप हो जाएगा। इसलिए आए, जगत में मायावाद जब तक रहेगा, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खलेदम ब्रह्म, तत्त्वमसि तुम भी वही हो, तब तक जगत में शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं होगा। इसको हटाना जरूरी है। इसी को हटाने के लिए मध्वाचार्य, रामानुज, विष्णु स्वामी और सब आचार्य ने बहुत कार्य किया। इस सत्य को हटाया गया। जब तक ही कर्म रहेगा, अपने सुख की भावना, तब तक भक्ति का प्रचार नहीं होगा। हमारे ऋषियों ने जागतिक हित के लिए कुछ कर्मों का भी प्रचार किया है। उन लोगों ने, इसके पहले के आचार्यों ने, रामानुज इत्यादि ने भक्ति का भी प्रचार किया है, वैधिक भक्ति का प्रचार किया, जिसे वैकुंठ में सहज ही जाया जा सकता है, इसका प्रचार किया उन लोगों ने दिया। किंतु रूप गोस्वामी किस चीज को देने के लिए आए थे? केवल महाप्रभु जी इस भाव को लेकर के आए थे देने के लिए, स्पेशल रूप में इसी चीज को देने के लिए आए। किंतु थोड़ा सा और भी काम किया, शुद्ध भक्ति के विषय में बतलाया उन्होंने। किंतु शुद्ध भक्ति के बतलाने में भी उनका उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्ट था वो महाप्रभु जी का भाव देना, जिसके लिए वो आए। इसीलिए बतलाया है, रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हुए कहा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदांतिकम्। रूप गोस्वामी को इस श्लोक में प्रणाम किया, जो चैतन्य महाप्रभु जिस भाव को देने के लिए जगत में आए हैं, उनके भावों को समझ करके उसको देने के लिए उन्होंने सारा जीवन प्रयत्न किया और उसी की स्थापना उन्होंने। हम लोग के स्वामी जी अभी जो पाश्चात्य देश में गए, इस देश में गए, उन्होंने जो प्रचार किया, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, श्रीमद्भागवत, चैतन्य चैतामृत इत्यादि का उन्होंने अनुवाद किया, विश्व में इसका प्रचारित किया। उनका मतलब क्या था, मूल ध्येय क्या था? क्या रामानुज ने जिस भक्ति को दिया उसी भक्ति को देना इनका उद्देश्य था? अथवा शंकराचार्य जी ने जो मायावाद का प्रचार किया उसका खंडन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था जिसमें उन्होंने किया है? क्या गीता को ही प्रचार करना उनका जीवन का मूल ध्येय था? गीता का तो उसने ट्रांसलेशन उन्होंने किया, बहुत सुंदर, एक्सलेंट किया है गीता एज इट इज, उन्होंने किया जो नहीं कोई कह सके पहले वाले लोग। इनकी एक विशेषता हम और देखते हैं, और जितने भी आचार्य आए, किसी ने 108 वर्ष तक जीवित रह करके प्रचार किया, किसी ने 50 वर्ष तक, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। इस महापुरुष ने कितने दिनों के अंदर में समस्त विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व में प्रचार किया, ये रिकॉर्ड है कि नहीं? इतने कम समय में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, सारे विश्व के राष्ट्रों में, देशों में और विभिन्न भाषाओं में प्रचार करना आज तक किसने किया? कोई ऐसा उदाहरण नहीं। किंतु क्या गीता का जो उपदेश है, जब मैं ये शरीर नहीं हूं, इसको देने के लिए ही आए थे? किया तो मायावादियों ने इतना ठोस खंडन किया है जो और लोग नहीं किए, तो क्या इसी के लिए आए थे? इसलिए आए थे। इस पर थोड़ा सा हम लोग आज विचार कर रहे हैं क्योंकि यहां पर प्रसंग आया है। ये सब करने के लिए रास्ता साफ करना होता है, इसमें तो कुछ समय लगा, किंतु अंत में इनके विचारों को देखने से पता लगता है देहि गोवर्धन निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि हमारी जितनी अखिल अभिलाषाएं हैं हे गोवर्धन आप उसको पूर्ण कर दें। अत्रैव कृष्णो विश्वभानुपुत्र दानं गृहीतुं कलहं वितेने सुते स्पृहा जत्र महत्ततः श्री गोवर्धनो में विषताम अभिष्ट। हमारे अभिष्ट को पूर्ण, क्या उनका अभिष्ट है? इनका क्या अभिष्ट था जिसके लिए ये गिरिराज वृंदावन से भी गोवर्धन में जाना चाहते हैं? गोवर्धन वह स्थान है क्योंकि समस्त ब्रजमंडल में गोकुल श्रेष्ठ है। गोकुल जहां पर कृष्ण का जन्म यशोदा जी के गर्भ से हुआ, जिन्होंने वहीं पर क्रीड़ाएं की, दामोदर जहां लीला हुई वो सबसे स्थान है। गोकुल किसको कहते हैं? जहां पर गायों का समूह हो, गोपियों का समूह है, गोपों का समूह है और प्रधान गोप कृष्ण है, उनका वहां पर निवास स्थान है, वो गोकुल है। इन गोकुल में वृंदावन, नंदगांव, बरसाना ये सब गोकुल हैं। कामने बन जहां पर कि नंद बाबा गोकुल को लेकर के वहां पर जाते थे, उनमें भी श्रेष्ठ वृंदावन है जहां पर आश्रय स्थली है। और इस वृंदावन में भी वो स्थान सबसे श्रेष्ठ है जहां वहां गोवर्धन, और गोवर्धन में भी दो नेत्र के समान जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन के अंदर में भी वहां पर सबसे श्रेष्ठ स्थान माने गए हैं, जहां पर श्री राधा कृष्ण दोनों जुगल की बहुत सुंदर से सुंदर मनोहारी मधुर लीलाएं चलती हैं। ये गोवर्धन का अंतर्गत में वृंदावन में तो है, किंतु अंत में उन्होंने क्यों जाना चाहा गोवर्धन में? इसलिए कि अराश में अराश कृष्ण की सर्वोत्तम लीला है, उस राश में को कहते हैं पंचायती राश। पंचायती राश इसलिए उसमें साधन सिद्धा भी गोपियां हैं और नित्य सिद्ध भी गोपियां हैं और राधिका जी जो स्वरूप शक्ति हैं उनकी काय दुहा और स्वयं राधा जी भी, सभी लोग सम्मिलित हैं। इसलिए वहां पर राधा जी की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि तरह तरह के अधिकारी हैं। जहां पर तरह तरह के अधिकारी होते हैं वहां पर राधा कृष्ण की सबसे गंभीर वो विहार नहीं हो सकता, जहां पर चंद्रावली इत्यादि भी नहीं जा सकती हैं। उस निर्जन स्थान में केवल अपने प्रिय सखियों के साथ में राधा कृष्ण का विहार संभव है, इसलिए रास में वो सब नहीं हो सकता। इसीलिए रास को छोड़कर के राधा जी मान करके चली गई और कृष्ण बाध्य होकर के उनके पीछे पीछे चले गए, रास खत्म हो गया। इसलिए वृंदावन का जो रास है ये पंचायती रास में है, इसमें राधा जी की पूर्ण इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती जो सर्वोत्तम है, इसलिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा और बासंती रास वहां हुआ और राधा जी से एकांत में मिले उन कुंजों में। इसलिए इस श्लोक में कहते हैं रूप गोस्वामी जी परमदमदन लीला कंदरे कंदरे ते रचि अचिनव दूनू दंदमश्मिन नमंदम इतकिल कर्नाटक लग्न कस्तुर्वे निज निकट निवासम देव गोवर्धन। जहां पर यहां वृंदावन में तो रास पंचायती, यहां पर सभी लोग हैं, साधन से सिद्ध भी हुई हैं और वहां पर स्वरूप शक्ति से जो प्रकाशित जो ललिता विशाखा चित्रा चंपक लता इत्यादि जो विशेष सखियां हैं जो राधा जी के भाव के सन्निकट हैं, क्यों उन्हीं गोपियों को लेकर के वहां पर कुंजों कुंजों में विलास कर, जहां पर चंद्रौली भी नहीं जा सकती हैं और सखियां भी नहीं जा सकती, अपने मन से दोनों विहार कर सकते हैं स्वच्छंद रूप में, यहां पर कहीं स्वच्छंद रहता है। इसलिए गोवर्धन जी उन दोनों की सेवा के लिए तरह तरह के कुंज निवार करते हैं, तरह तरह के फल बनाते हैं जैसे वो सभी लोग इसका आस्वादन कर सके। मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, सुरभि कुंड इत्यादि कुंड वहां पर तैयार करते हैं उनको पानी पिलाने के लिए, गायों को, सखाओं को, सखियों को, कृष्ण को। रचना के लिए तरह तरह के वो जैसे हम लोग के तिलक इत्यादि होते हैं वो लाल लाल पत्थरों के उसमें तैयार, जैसे कि वो लोग सब अपने को विचित्र रंगों में, ऐसी कोई लीला नहीं जो वहां पर नहीं होती। और गिरिराज जी उसके साक्षी हैं, ये कौन कह रहा है, वो राधा जी स्वयं अपने मुख से कह रही हैं। तो गोपियों ने देखा यदि गिरिराज ही हमारे समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते, इसलिए गोवर्धन के निकट रहती है। और गोवर्धन में आकर के उन्होंने कहा हरिदास तीन हैं, एक युधिष्ठिर महाराज हरिदास हैं, दूसरे हरिदास हैं उद्धव जी, और तीसरे हरिदास हैं गिरिराज गोवर्धन। पहले जो हरिदास था, हरिदास हैं महाराज युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज, हनुमान, और इन लोगों से बहुत ऊंचे हैं, यहां तक कि नारद जी उनके चरण कमलों को दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं, जो उनको नारद जी को सौभाग्य नहीं है वो इनको प्राप्त है, इसलिए हरिदास है। कभी ये भगवान नारद जी के आश्रम में कभी गए, उनको सखा कहा, उनके रथ के घोड़ों को ढकाकर उनके लिए झूठ बोला, नारद जी के लिए उनके कंधे पर हाथ रख करके सखा सखा कहा, ये कुछ नहीं। और यहां युधिष्ठिर महाराज जी को जाकर के कृष्ण प्रणाम करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज जी उनको गले से लगा करके कभी सखा कहते हैं, कभी दास बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, अपना सर्वस्व सब कुछ उनके चरणों में निछावर कर सकता ताकि कैसे। एक समय नारद जी उनके यहां पर पहुंचे, बड़ी उनकी प्रशंसा करने लगे, कहने कि देखो भगवान अवतार लेकर के छिप करके तुम्हारे घर में रहते हैं सब लोगों को लेकर, और हम सब लोगों को सुयोग मिलता है तो तुम्हारे घर में आते हैं, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त। विशेष करके एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु हमको एक वर दीजिए। तो कृष्ण हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले तू वर क्या लेगा, अरे वर तो प्रहलाद महाराज जी ने भी नहीं लिया, वो साधारण मेरा भक्त, जब वो कहता जो वर मांगने की स्प्रिया हो जाए तू तो तुम वर लेगा, ये तो बड़ी हंसी की बात है। मैं नहीं प्रभु जी, आप हमको वंचित ठगिए मत, मैं आपसे एक वर चाहता। तो क्या, तो विश्व की सबसे सुंदरी स्त्री से मेरा विवाह हो। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ी किया तूने, सब लोग चाहते हैं कि संसार छोड़कर के हम इधर आए और तुम विवाह करना चाहता है सुंदरी स्त्री से, अच्छा और क्या चाहता है। तो विश्व ब्रह्मांड में हमारे समान किसी का साम्राज्य न हो और ऐश्वर्य नहीं हो। कृष्ण कुछ आश्चर्यचकित हो, भाई तुम किस लिए मांग रहा, तो मैं इसलिए मांग रहा हूं कि लोग आपसे डरते हैं आपका भजन करने से, डरते हैं इसलिए कि यदि कृष्ण का भजन करेंगे तो वो हमारा सब धन हरण कर लेगा और पथ का भिखारी बना देगा, लंगोटी भी नहीं रहेगी, सुखदेव गोस्वामी जैसा सबको बना देगा, इसलिए कृष्ण का भजन लोग नहीं करते। केवल अकिंचन निष्किंचन लोग उनका भजन करते हैं, सभी लोग डरते हैं कि हमारा कहीं सब कुछ खत्म न हो जाए। हरिष्य तद धनम समेत, जिसको कृष्ण अनुग्रह करके ग्रहण करता है उसके सब धनों को समाप्त करता है। इसलिए सब लोग डर के मारे, जिनका लंबा सुन है उनका भजन करते हैं, माने गणेश जी का, कोई दुर्गा जी का भजन करता है, कोई शंकर जी का भजन करता है, कोई किसका भजन करता है, कृष्ण का भजन डर के मारे नहीं करते। इसलिए यदि आप विश्व ब्रह्मांड का ऐश्वर्य हमको दे देंगे और सुंदरी पत्नी दे देंगे तो लोकाचारी युधिष्ठिर महाराज तो भजन करके इतना सुंदर ऐश्वर्य और इतनी सुंदर गृहस्थी करने लायक द्रौपदी जैसी पत्नी दे दी तो सब लोग भजन करने लग जाए, किसी का डर नहीं जाए। इसलिए प्रभु हमको अच्छा बतलाओ, प्रहलाद की कल्पना इतनी जा सकती है? नहीं जा सकती। हनुमान जी की भी कल्पना इतनी नहीं जाएगी। इसलिए हनुमान इत्यादि सब भक्तों की अपेक्षा युधिष्ठिर महाराज, क्यों? कृष्ण का ही सब सुख चाहते हैं, कृष्ण का ही भजन जगत में सब लोगों से कराना चाहते हैं। इसलिए ये हरिदास वर्ग हैं, हरिदास वर्ग हैं, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। और इनसे भी ये हरिदास हैं, और हरिदास वर्ग कौन है? हरिदास वर्ग उद्धव जी, इससे भी बहुत ऊंचा। कृष्ण ने अर्जुन या युधिष्ठिर को ब्रज में नहीं भेजा गोपियों के पास में, किसको भेजा? अपनी अतरंग प्रियाएं जो हैं उनका संग करने के लिए किसको भेजा? क्यों? उद्धव जी का ही इनका हृदय, दोनों का एक था हृदय, और ये चाहते हैं भाई मैं, मुझे तो अब वृंदावन तो जाना नहीं है, बहुत विशेष कारण है, जाने से राधिका जी का दुख और बढ़ जाता है, मिलने में उनको विरह का दुख हो जाता है, इसलिए हम दूर रहेंगे तो उनको विरह में इतना डूब जाती हैं जो हमको देखती हैं कि मैं यही हूं, और कमाल वृक्ष को आलिंगन करके उसमें सुखी रहती हैं, खाती पीती हैं, श्रृंगार करती हैं, इसलिए दूर जाना, उनका सुखी मेरा सुख है, बहुत ऊंचा भाव। और कृष्ण सोचते हैं कि बिना उनके दम रह नहीं सकते, ऐसा कोई मित्र हो जो गोपियों की बातों को परस्पर कह करके अपना दुख कुछ कम कर, ऐसा जगत में कोई मैं मथुरा में तो नहीं देखता, ब्रज में ही। ये यदि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है और जिनको गुरु बनाया है उस गुरु के यहां उसी स्कूल में यदि ये प्रेम का पाठ पढ़ें और पाठ करके पास करके यदि आए यहां तो हमसे ये कुछ बातचीत कर सकता है, तो अपने लेवल में इनसे बातचीत करके अपने हृदय को मैं कुछ सांत्वना दे सकता हूं, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए उद्धव को भेजा, किस लिए? क्योंकि ये ब्रज के भाव के कुछ निकटतम में, युधिष्ठिर महाराज बहुत दूर है ऐश्वर्य में वो है, और ये ऐश्वर्य और माधुर्य जो दोनों में बराबर बराबर है, और वो ऐश्वर्य में, इसलिए जहां पर ऐश्वर्य माधुर्य दोनों है ये ब्रज भाव के निकट है, ब्रज के तो भाव नहीं है किंतु निकट है, वहां से कुछ सीख करके आएगा तो इनसे मैं प्रेम की बातें कुछ कर सकूंगा, गोपियों की बातें कुछ समझ सकते हैं, इसलिए इन्होंने उनको वहां पर भेजा, ये जाकर के उसी पाठशाला में पढ़े। और कृष्ण किसके पाठशाला में पढ़े? ललिता विशाखा जहां पर शिक्षक हैं, और हेड मिस्ट्रेस कौन है अध्यापिका? श्रीमती राधिका जी, उसमें ये जाकर के साष्टांग प्रणाम करके उनसे मंत्र लेकर के वहां पर उन्हें बहुत दिन 10 महीने तक शिक्षा ला दी। जब पूरा पाठ हो गया तो गोपियों ने उनको भेज दिया, अब तुम समावर्तन कर सकते हो, समावर्तन करके चले आए मथुरा कृष्ण से मिले। तो इसलिए उद्धव जी युधिष्ठिर से भी बड़े श्रेष्ठ हैं, किंतु इनसे भी लाख कोटि गुण श्रेष्ठ कौन है? गिरिराज गोवर्धन। जिस कुंजों में उनकी सेवा होती है उद्धव जी वहां प्रवेश कर सकते हैं, जहां राधा कृष्ण रह सकते हैं नहीं। जिस समय उद्धव जी वहां पर गए तो एक भ्रमर आया, और भ्रमर को देख करके राधा जी को यह हुआ भावना कि ये कृष्ण का काला दूत आया है। उद्धव जी को नहीं देखा, उद्धव जी साष्टांग प्रणाम करके एक कोने में दुबक करके रहे, इनको किसी ने नहीं देखा। उद्धव जी से उनकी बात नहीं हुई, धर्म से उसकी बात हुई। भगवद्गीता इत्यादि में उद्धव जी गोपियों से क्या बात करें, उनके चरित्र को देख करके ही ठगे रह गए। इसलिए उद्धव जी से इनकी बातें नहीं हुई, बस सुना जो कुछ उसी में तन्मय हो गए और उनका जीवन कृतार्थ हो गया उद्धव जी का। तो उन्होंने देखा जी जब हमको ये भाव लाना है तो हम गिरिराज जी में कहीं दूब की घास या कुछ में हो जाऊं, आशा महो चरण रे जिसाम हम श्याम वृंदावने किमत कुल मन कौषधी नाम जो दुष्पजन स्वजन आर्य पतंज हित्वा भेजे मुकुंद पदबिम। मैं यदि वृंदावन में नहीं गिरिराज गोवर्धन में के भाव से कुछ जब वो अभिशाप करने के लिए कृष्ण में जाएंगे कृष्ण के पास, तो उसी समय जाते समय में उनके चरणों की धूली उन पर पड़ जाए, वो दूसरे किसी का धूली नहीं चाहे, इसलिए गिरिराज गोवर्धन में आए। तो जिस गोवर्धन का आश्रय हरिदास वर्ग में उद्धव जी ले रहे हैं वो साधारण है, इसलिए उद्धव जी के भी शेल्टर हैं। गिरिराज जी ये जानते हैं, उनके लिए कुंजे कंदराएं पानी फल मूल सब कुछ देते हैं, उनकी सेवा के लिए सबसे प्रस्तुत रहते हैं। अच्छा, कुंजों में जो गोवर्धन के कुंज हैं वो कुंज क्या चीज है, कुंज बने कैसे, गोवर्धन जी के ये रूमे हैं, वहां की झाड़ियां क्या है, गोवर्धन जी के ये सब रूमे हैं, वृक्ष इत्यादि क्या है, वो सब रूमे हैं, पानी वहां का झरना क्या है, कृष्ण प्रेम में विभोर करके जब रोने लगते हैं और रोने का वो ये सब पानी प्रेम का ये पानी है, जल है। गोवर्धन का सब कुछ भी कृष्ण ही का प्रेम है, इसलिए अपने रोमे से जो कुंज बनाते हैं तो उस कुंज में राधा कृष्ण की लीला होती है, अत्यंत निर्जन से निर्जन उसको गोवर्धन जी देखते हैं कि नहीं देखते, जरूर देखते हैं, इसलिए उनके कृपा पात्र हैं राधा कृष्ण के सबसे अधिक। गिरिराज जी को कोई गोवर्धन कृष्ण के रूप में पूजा करता है, किंतु हमारे संप्रदाय के लोग उनको भगवान के रूप में नहीं परम भक्त के रूप में पूजा करते हैं, जिससे कि उस राश जो वहां पर हुई या उनका जो प्रेम है उसको दे सकते हैं, भगवान होने से उस प्रेम को नहीं दे सकते जो कि प्रेम राधा जी और उनकी सखियां दे सकती, उनके भक्त लोग दे सकते, इसलिए सब भक्त लोग गिरिराज के गोवर्धन में जाते हैं। जो उनकी प्रत्येक लीलाओं को आप दर्शन करने वाले हैं, केवल दर्शन करने वाले नहीं, उनके सखाओं के साथ में जब जाते हैं वहीं पर पानी पीते हैं, गरियों को चराते हैं, फल खाते हैं, बड़े आराम से घूमते हैं, सखियों के साथ में लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो कि गोवर्धन में कृष्ण के विहार करने का ये लीलाओं का वर्णन किया गया। इसलिए सभी भक्त लोग ये चाहते हैं गिरिराज गोवर्धन उस प्रेम को देने में समर्थ हैं, जिस प्रेम को आस्वादन राधा और कृष्ण कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु जिसको देने के लिए आए और स्वयं चखने के लिए आए उस प्रेम को। इसलिए इस प्रभुपाद जी ने हमारे रूप गोस्वामी की भांति, हमारे प्रभुपाद की भांति, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की भांति, हमारे आराध्यतम नित्य लीला प्रभु श्री शुक्ल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की भांति इस वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन राज में वहां पर रहना चाहते हैं, दो रूप में, साधक रूप में और साधक रूप से यदि हमको प्रेम नहीं है तो वो प्रेम मिल जाएगा, और सिद्ध रूप में, सिद्ध रूप में भी नित्य लीला का स्वागत वहां पर कर सकेंगे, राधा और कृष्ण की सबसे अधिक जो प्रेम है महाभाव की अवस्था का उसका भी हम दर्शन कर सकते हैं और उसको हम पाने की चेष्टा कर सकते हैं, अन्यथा कहीं नहीं होगा। वृंदावन में तीन चीज है, एक है ललिता जी, एक गिरिराज गोवर्धन, एक जमुना जी, जो इस प्रेम को दे सकते। इसलिए भक्त लोग इन्हीं तीनों का अधिक रूप में आश्रय लेकर के राधा जी की कृपा पात्री नित्य पाल्यदासी होना चाहते हैं। इसलिए संक्षेप में यही हमने बतलाया और यही हम भी प्रार्थना करते हैं, हे गिरिराज गोवर्धन, जहां पर आप जत्र जत्रैव कृष्णो विषभान पुत्र और एक और जत्रैव गंगामनु नारी राधा आरोग्य मध्य तुम निमग्न नौका कृष्णो ही राधा अनुपलोप भोषण शीर्षा वो हमारी समस्त मान्यताओं कहां पर गिरिराज गोवर्धन में एक सरोवर है उस सरोवर को कहते हैं मानसी गंगा। अब तो कुछ सूख गई है पहले बहुत लंबी चौड़ी थी उसको पार करना होता था नाव के द्वारा। शाम का समय हो गया जहां पर पार करने वाला एक मल्ला था वो भी कुछ थक सा गया है शाम को तो वहां पर नाव लेकर के खड़ा है। कुछ गोपियां आती हैं कहती हमको घर में पार कर दो कहता अब समय नहीं शाम हो गई है बादल भी आकाश में दिख रहे हैं कुछ हवा आने की संभावना है आंधी मेरी नौका पुरानी हो गई उसमें छेद हो गए हैं और मैं थक गया इसलिए मैं नहीं पार कर सकता। उन्होंने आग्रह देखा तो उन्होंने कहा अच्छा तो जब बहुत मेरी विवशता है तो एक एक को पार करूंगा अलग अलग एक साथ में नहीं करूंगा। एक पठान गोपी को पार कर रहे हैं गोवर्धन जी इसके साक्षी हैं इसलिए कारण और हमारे आचार्यों की यही मनोकामना होती है कि इस लीला में प्रवेश करें इसलिए वहां जाना चाहते हैं इसलिए एक झलक दे रहा हूं। नाव पर उसको उठा लिया बोले देखो कमर कस के तैयार हो जाओ क्योंकि मेरी नाव पुरानी है और देखो पानी भरने लग गया बीच में थोड़ा सा ले गया नौका में देखा जो पानी काफी भर गया कहते भाई अब कूदने की तैयारी में रहो तैरना उड़ना जानती है तो नहीं तो तैरना तो नहीं जानती तो फिर ये तुम्हारे अनावश्यक जो कपड़े हैं और तुम्हारी घड़ियां कुड़िया जो है उसको सब फेंक दो और अनावश्यक कपड़े भी फेंक दो और नहीं तो यदि कूद जाएगी तो कपड़ों में लग करके तू डूब जाएगी इसलिए तुम तैयार हो जाओ। इस तरह से विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हुए कृष्ण जाते हैं और राधा देवी डर जाती हैं और उनको पकड़ लेती हैं कृष्ण यही चाहते हैं ऐसी जो मनोहारी कृष्ण की नित्य लीला है उस गिरिराज गोवर्धन में होती है। हे गिरिराज जी हमारी इस अभिलाषा को भी आपूर्ण कर इसलिए स्वामी जी भी इस भावना से जाते इनके जीवन का आदर्श और मूल्य भावना यही थी जगत को ये सब चीजें देना चाहते थे किंतु जंगल काटने में लग गया समय बड़ी भक्ति इत्यादि को प्रचार करने में लग गया श्रीमद भागवत को भी पूरा देना चाहते थे दशम स्कंध की लीलाओं को जहां पर इन सब का वर्णन है किंतु शायद इसलिए प्रभु जी को यह भी मंजूर नहीं था या क्यों उन्होंने ऐसा किया उसके पहले ही उनको इस जगत से प्रभु अपने नित्य लीला के लिए जल्दी से बुला लिया शायद प्रभु को नहीं चाहते थे कि अधिक दिन ये हमसे दूर रहे इसलिए उनको अपने पास निकट में गिरिराज गोवर्धन ने ही उनकी जाने की इच्छा थी गिरिराज गोवर्धन ने उनको बुला लिया इसलिए गिरिराज गोवर्धन हम सब लोगों के मूल आधार है वहां पर प्रेम की भावनाएं सबसे उन्नत है उसी का स्वागत करने लिए और जगत को देने के लिए आए थे राधा भक्ति की इच्छा कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। आज कुछ लोग आते हैं ये सब प्रभुपाद देने के लिए नहीं आए तुम कैसे जानते हो ये नहीं देने आए तो उनमें भक्ति भी पूर्ण रूप से नहीं थी। अभी ये प्रसंग सुनकर के मुझको बहुत आनंद हुआ कि दो ग्रुप बन गए एक ग्रुप कहता है कि प्रभुपाद को गोवर्धन में ले जाना अच्छा है और एक ग्रुप कहता है कि नहीं वो जहां है वहीं गोवर्धन गिर रहा है उनको इस स्थिति में ले जाना उचित नहीं है। कौन ठीक है कौन बेठीक है ये मैं नहीं कहना चाहता वो तो आप लोग सभी विचार करके देखें मैं केवल सिद्धांत के रूप में ये बतला रहा हूं। सेवाएं दो प्रकार की होती एक वाच्यतम सेवा होती है और एक आभ्यंतरिक आंतरिक सेवा होती है। बाहरी सेवा की अपेक्षा आभ्यंतरिक जो सेवा होती है बहुत श्रेष्ठ होती है। यशोदा जी कृष्ण को नखट जानकर उनको हथियार से एक चपत लगा देती है गाल में और कृष्ण मुंह करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये कौन सी सेवा है? कृष्ण को मारना सेवा है? साधारण भक्त ऐसा कर सकता है? कृष्ण आए हैं भक्त के दरवाजे पर और भक्त कहकर लौट जाओ, तुमसे कोई जरूरत नहीं, उनसे उठ जाए, उनका उनसे बातचीत न करें, ये उचित है? ये बाहर की दृष्टि से ये खराब है। किंतु कृष्ण को, कृष्ण भाई टेढ़े हैं ना, तीन तरह से उनको टेढ़ी सेवाएं ही अच्छी लगती है, उनको सीधी साधी से कोई अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मा जी स्तर स्तुति कर रहे हैं उनके तरफ देखते हैं और गोपियां उनको गाली दे रही हैं, अरे धृष्ट लंपट चोर न जाने क्या, कृष्ण कान लगा करके सुन रहे हैं बड़े। इसलिए कृष्ण की आंतरिक सेवा क्या है? यशोदा जी का चप्पत खाना प्रेम से ही अच्छा है या ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी है? उसी तरह से गुरु वर्ग भी इस जगत में आते हैं, लोगों की भावनाओं को देखते हैं और उन्होंने बड़े सुंदर रूप में बदला, उनकी भावनाओं को उन्नत ले जाते हैं, बाह्य से भीतर की तरफ ले जाते हैं। यही भक्तों का स्वभाव है। गुरु के इन भाव को समझ लेना साधारण अधिकारियों के लिए बहुत कठिन है। जब तक कि खुद ही उस प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंच जाएगा, अपने गुरु को नहीं समझ सकता है। उनके बाहरी विचारों को, उपदेशों को लेकर के रहने के लिए बाध्य होता है, कभी नहीं समझ सकता। अंतरंग उनके भक्त हैं, उनके माध्यम से यशोदा जी कृष्ण को दूध पिला रही हैं, कृष्ण भी भर पेट नहीं पाए और दूध कुछ उफन रहा था आग में दूध पर, यशोदा जी ने कृष्ण को जोर से बैठा दिया। कैसे कृष्ण को 60,000 हाथी वाली बल वाली पुतना कृष्ण को अपने स्तन से नहीं हटा सकी, बहुत प्रयत्न किया नहीं हटा सकी, और यशोदा जी ने उसी कृष्ण को बाएं हाथ से एक हाथ से बैठ गया धक्के रीति कर दिया कृष्ण मतलब और वहां पर रख दिया। कृष्ण का सर्वशक्तिमान, उनकी सर्वशक्तिमत्ता और भगवत्ता वहां पर धरी रह गई, आंख से आंसू निकल आए, मैं कुछ विवश हो गया। जो यशोदा जी के बल के सामने उनका बल तुच्छ और विवश रह गया, कुछ नहीं कर सके, ओ करके रोने लगे। जब भैया चली गई तो कुछ क्रोध हुआ, उनके होठ फड़फड़ाने लगे और ऊपर के दांत से बहुत सुंदर भी दो दांत निकले हैं केवल, बस अपने दोनों दांतों से वो भी दूध हुआ ली और अपने होठों को ऐसे दबा लिया, भैया हमको पिलाया नहीं दूध और चली गई, इसको दूध ही प्यारा है, मैं प्यारा नहीं, बस लोहे से लेकर के और नीचे में मार दिया। वो जो मथा हुआ जो मंठा था। अब यहां पर यह प्रश्न होता है कि कृष्ण भक्तों को प्यारे हैं ना वो दूध प्यारा है? दूध किस लिए? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण बैठा हुआ अपने कपड़े को फाड़ रहा है, जो यशोदा जी ने देखा ये तो बड़ा बदमाश हो गया, कपड़े फाड़ा तो एक थप्पड़ लगा दी, तो वो कपड़ा फाड़ा तो कपड़ा प्यारा है ना, कृष्ण प्यारा है, लाख कपड़े आ जाएंगे। नहीं, भक्त ऐसा नहीं सोचता, जो चीजें कृष्ण को प्यारी हैं और कृष्ण की रक्षा करते हैं वो कृष्ण से भी अधिक रक्षणीय है। यदि ऐसा है तो उत्तम कोटि का वो भक्त होगा। यशोदा जी सोच रहे हैं हमारे स्तन का तो मक्खन नहीं बनेगा, हमारे स्तन से जो दूध आएगा उसे पेड़ा तो नहीं बनेगा, राबड़ी तो नहीं बनेगी, ऐसी मिठाइयां बनेंगी जो दस दस दिन रह जाएंगी, कृष्ण बड़े प्रेम के साथ नहीं खाया करेगा। भविष्य भी सोचती है, कृष्ण नहीं सोच सकता, वो छोटा सा बच्चा है ना, उसकी भगवत्ता वहां पर कुछ नहीं है, वो तो करवट भी नहीं था ले सकता। यशोदा जी करवट लगा देंगे तो करवट ले लेगा, ऐसा मासूम बच्चा कृष्ण, ऐसा वो प्रेम चाहे। ऐसे ही भक्त लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वहां, वो सेवा अधिक बड़ी है, वो साधारण भक्तों के लिए कल्पनीय नहीं है। और यहां पर भी ये प्रभुपाद जी अस्वस्थ होने का अभिनय कर रहे हैं, उनको कोई रोग नहीं होता, वो तो जाने के समय कोई बहाना बनाना होता है, अपराजित उनका शरीर होता है, तभी हमारी सेवा को ग्रहण करने के लिए और सेवा को उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए ये रोग होता है।
एक आराध्य प्रभु जी जैसा कह रहे हैं उनको ले जाया जाए, एक कहता है कि मत ले जाओ, चल रही ये बातें। अब किसकी बात उन्होंने मानी? जो ये सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद ऐसा चाहने पर भी हमने ऐसा नहीं होने, कृष्ण आए हैं गोपियों से बातचीत करने के लिए और गोपियां रूठ करके मुख फिरा लेती हैं और कह देती हैं सखी से ये जाओ इसको पा दो जैसे काला यहां से चला जाए। ऐसे ही ये गुरु वर्ग भी आते हैं, परीक्षा भी देते हैं और हमारी भावनाओं को बढ़ाते हैं। यहां पर ये देखते हैं कि हमारे सुख दुख का ख्याल किसको है। मैं गोवर्धन जाऊंगा, इसमें मुझे सुख होगा कि कष्ट होगा कि क्या होगा, ये कौन सोच रहा है? उन्होंने ऊपर से देखा जैसे भाई रूपा जी जाएंगे, इनकी इच्छा है उनको ले चलो, भले इनको दुख हो कष्ट हो कोई बात नहीं है, यदि चले जाएंगे बीच में तो कोई हर्ज नहीं, यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में यदि चले जाएंगे तो गुरु वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इनकी इच्छा पूर्ण होगी। ये करें कि नहीं, जहां प्रभुपाद है वही गोवर्धन है, वही वृंदावन है, वही सब कुछ है, उनको जाने में कष्ट होगा। हम अपने कष्ट की बात नहीं देखते, इनके कष्ट की बात करते, इसलिए प्रभुपाद जी यहीं पर हैं, वहीं पर उनका स्मरण जब करते हैं तो वहां पर पहुंच गए, इसलिए इनको कष्ट नहीं। और अंत में जब प्रभुपाद जी ने इनकी भावनाओं को देखा तो पहले की भावनाओं को छोड़ करके कह दिया नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? तुम लोग ऐसा नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? मेरे लिए। इसलिए कृष्णदास बाबा जी को उन्होंने कहा जी देखो हमारे प्रति इनका कितना अफेक्शन अधिक है, जो हमारे लिए ही वहां पर। तो मैं समझता हूं कि जब उन्होंने अंत में संकल्प किया तो वो गोवर्धन में पहुंच गए हैं और गोवर्धन में निवास कर रहे हैं, मुझको पूर्ण विश्वास है ये जरूर है, क्योंकि हमारे आचार्य लोग वहां पर निवास कर रहे हैं तो ये भी जरूर निवास करेंगे। किंतु किस रूप में निवास कर रहे हैं ये साधारण विभूति के लिए ये सोचना कल्पना करना बहुत कठिन, इसलिए हम लोग पहले प्रभुपाद जी के ऊपर विचारों को मानेंगे, धीरे धीरे उनकी कृपा से उनके भक्तों के कृपा से हम जब भक्ति के राज्य में विचार में जब प्रविष्ठित होंगे तो उनके गहन विचारों को समझ सकेंगे और तब फिर अंत में उनकी अंतर नहीं की जो भावनाएं हैं, गोवर्धन में बात करना, राधा कृष्ण जुगत की सेवा करना और इसी को देने के लिए कुछ आए थे और वो पथ ऐसा दे गए हैं कुछ न कुछ दिनों में लोगों को वो भाव आएगा जरूर। साधु संघ नाम कीर्तन भागवत समय मथुरावास श्री मुक्ति सत्थाय सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचम कृष्ण प्रेम जन्मा यही पांच अल्प संघ, इन पांचों का साधनों का जो नियम अनुसार में सेवन करेगा अवश्य ही महाप्रभु कहे जिस प्रेम के लिए देने के लिए आते उसमें ये प्रवेश करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इन सब ग्रंथों का प्रकाश किया, वो लाइन दिया, अर्चन की व्यवस्था की, भागवत पाठ की व्यवस्था की, चैतन्य चिंतामृत पाठ की व्यवस्था की और अपने संकल्प के द्वारा देखा कि मैं बम्बई हमारा ऑफिस है, साधन का क्षेत्र मायापुर है और हमारा एबोर्ड कहाँ है, घर कहाँ है, वृंदावन में भी कहां घर होना चाहते हैं, कहां पर, वो तो सब वृंदावन है किंतु गोवर्धन में भी कहां चाहते हैं, तो वही के लिए इन सब भावनाओं को जान करके उनकी भावनाओं को समझ करके वैसे ही भजन करने की चेष्टा करें हम लोगों को करना चाहिए और जो इनकी अंतर नहीं इन उच्चतम भावनाओं को जो समझ सकेंगे वो भजन राज में जल्दी से आगे चलेगा। आज यही कह करके उन सबके चरणों में प्रभुपाद जी के और अपने गुरु जी के चरणों में, वृंदावन के चरणों में, गिरिराज जी के चरणों में और प्रश्न पूछने वाले गिरिराज जी के चरण दास के चरणों में प्रणत होकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
संतन चैतन्य महाप्रभु express the desire to go to Vrindavan. Stories of Chaitanya Mahaprabhu sometimes express the idea that his mind is in Vrindavan or Vrindavan is in his mind or heart. that we have experienced today, that we were actually in Vrindavan, because Maharaj is always in Vrindavan, and Vrindavan is in Maharaj's heart. And I can speak for myself that the language was no barrier. Actually, once before I had a similar experience with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was also speaking to some very good devotees in Amritsar. And so much feeling came from his heart. He was speaking about Krishna in Vrindavan. And even though I had just come to India a few months before, I felt I was able to understand what Srila Prabhupada was saying in Hindi. And today also I had the same experience. But even during the portions where I couldn't understand the language, I still felt that something was happening due to being in Vrindavan, in Maharaj's presence. If we go to Vrindavan and visit some holy place, like Govardhan Hill, even if there's no Krishna Katha, but we get benefit. And at the same time, if there's Krishna Katha, we get more benefit. So I think everyone who is present here today got so much benefit, even if they were not able to understand the language fully. So I pray to Srila Prabhupada and Sri Sri Radharasa Bihariji that Maharaj will come here again and again and give us his association and speak more Krishna Katha.
वृंदावन के तीन रूप
तो अप्रकट प्रकाश, एक प्रकट प्रकाश और एक दृश्यमान प्रकाश। अप्रकट प्रकाश कहते हैं गोलोक वृंदावन में जो नित्य प्रकाशित है, और वही जब इस जगत में आते हैं तो उसको प्रकट प्रकाश कहा जाता है कृष्ण के समय, और कृष्ण के चले जाने के बाद में उसको परिदृश्य मान, मैंने जैसा हम देख रहे हैं उस रूप में कहा जाता है। अभी परिदृश्य मान में देख कौन रहा है, हम लोग देखने वाले, किंतु इस समय योग माया ने जगत से अपना संबंध थोड़ा सा हटा दिया है। पृथ्वी और योग माया के बीच में संबंध नहीं, प्रकट के समय में संबंध होने से कृष्ण की लीलाएं जो अपराजित है, चिन्मयी है, वो भी साधारण लोग भी देख सकते हैं, किंतु इस समय जो माया का प्रभाव थोड़ा सा हटा दिया है, फेंक दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है, जैसे बल्ब का वो स्विच ऑफ रहने से नहीं जलता है, ठीक उसी तरह से स्विच उन्होंने हटा दिया है। इसलिए अभी जो शर्म को देखते हैं, अभी वृंदावन का वह भाव जो नित्य सिद्ध रूप है वो नहीं दिखाई, इसलिए हमारे अधिकार के साधारण लोगों के अनुसार में जैसे कोई एक वस्तु नष्ट हो जाती है, सूख जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे ही परिदृश्यमान में वही चीज दिखाई पड़ती है हमारे अधिकार के अनुसार। इसलिए अभी उसमें देखते हैं कि पानी नहीं है, कि थोड़ा कम हो गया, कि धीरे धीरे सूख रही है, गोवर्धन में पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर कुंजे नहीं है, उसमें गहवरे नहीं है, वृंदावन फूटा सा दिख पड़ता है, मरुभूमि सा दिख पड़ता है, किंतु अभी भी वृंदावन वैसा ही है, किंतु हमारे नेत्र नहीं देख सकते उसको, ऊपर की चीज को देखते हैं, क्योंकि जो माया से हमारा संबंध नहीं, इसलिए ऐसा। जिस समय जो माया से संबंध हमारा हो जाएगा, हम अभी भी वृंदावन को उसी रूप में देखेंगे।
संबंध कैसे होगा?
भजन से, गुरु जी की सेवा से भजन होने लगेगा, और गुरु निष्ठा जिसकी जितनी पक्की होगी,
वो भजन राज में प्रवेश करेगा। गुरु जी की विषम पूर्वक सेवा करते हुए भजन करते करते अनर्थ दूर होगा। पहले श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव जब आएगा संक्षेप।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Thank you. Thank you.